करता है तो प्रणाम करने से क्या हुआ, उसकी गति जो आगे जा रहा था वो लौट करके चला करके वहां पर खड़ा हो गया, इसलिए भग्न गति उनकी गति। देखो कह रहे हैं ये गति का तोड़ना तोड़ना ये इस रूप में मत समझो, मुकुंद गीत आवर्त लक्ष्य लक्ष्य मनोभव भग्न भेगा। मनोभव कहते हैं प्रेम को, ऊंचे प्रेम को साधारण जगत में कहते हैं काम। काम एक मन का अधिकार है जो अपने भोगों से उत्पन्न होता है, दूसरों के प्रति उसमें हिताकांक्षा नहीं होती, जिसको कहते हैं साधारण रूप में अंग्रेजी में लस्ट। ये किसी भी साधक के लिए ये बहुत ही हानिकारक है, जीवन को चौपट कर देता है। काम जागतिक काम इसी को कहते हैं मनोभव। मन में गति को एकदम कैसा कर देता है, उसमें मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, उसमें कुत्ता जैसा आदमी हो जाता है, कोई भी ज्ञान नहीं। अरे और की तो क्या, भगवान मोहिनी रूप धारण किया तो शंकर जी की क्या स्थिति हो गई, पहले माने नहीं तो उनको कहा जैसे ऐसा मत कीजिए, हमारा दर्शन मत मांगिए मोहिनी का, तो नहीं माने तो दिखला दिया, तो और लोगों की क्या हो। तो ये साधकों के लिए बहुत ही खराब चीज है, किंतु प्रेम का भी लक्षण वही है। ऊपर से दिखने में तो दोनों एक समान लगता है, किंतु एक है शुद्ध प्रेम जिसमें अपना कुछ नहीं देखता है, केवल सब समय भगवान की प्रीति को पूरा करता है, इसलिए वो प्रेम है। आत्मेन्द्रिय प्रति इच्छा भरे कामना और कृष्ण प्रीति भरे प्रेम, कृष्ण को प्रेम प्रसन्न करने के लिए जो होता है उसको कहते हैं प्रेम, और अपने लिए होता है काम। सब समय अपना अपने भोग की कामना में काम, और जहां पर यह शुद्ध हो गया है एकमात्र कृष्ण का ही की सेवा के लिए वो होता है, तब होता है विशुद्ध रूप में।
तब तो इसको मानी जाए कि वासना कभी समाप्त नहीं होती,
वासना बदलती है,
बदल
कृष्ण की विषय से प्रति ये आशी जमा
सही मदद।
किंतु देखो तभी ये मन की गति है, वो शुद्ध होगी किंतु अंत में छोड़ना पड़ेगा उसे। विषय छड़िया कभी शुद्ध हो मन, किंतु उस मन से एक दिन छुट्टी पाना है। मन शुद्ध होने पर भी किसी समय गिराने की चेष्टा करेगा
ना, ये शरीर के साथ साथ मन का भी तो समाप्त होगा,
उसी लिए तो कहते हैं शरीर के साथ में समाप्त नहीं होगा,
यानी जब की मुक्त होकर के चले जा रहे हैं
तब छूटे, तब तक कुछ शुद्ध हो सकता है किंतु सब समय वो गिराने की चेष्टा में रहेगा, क्योंकि वो जड़ों से बना हुआ है, जड़ विषयों से ये मन बनता है, इसलिए वो वैसा है। शुद्ध होने पर भी उसमें जड़ीय भावों की भावना रहेगी, इसलिए वैष्णव लोग या संत लोग या साधक लोग ये लिंग शरीर को भी छोड़ देने की चेष्टा, जैसे नारद जी का हुआ।
इच्छा जो है वो तो आत्मस्वरूप नहीं है,
होने पर भी आत्मा का शरीर मन अलग है, मन का अलग है शरीर का अलग। इसलिए नारद जी का पंच भौतिक शरीर शुद्धता, सुनो नारद जी का पंच भौतिक शरीर तो दूर हो गया था, पंच भौतिक शरीर उनका जब नष्ट हो गया तो आत्मगत शरीर आत्मगत मन आत्मगत इंद्रियां सब उनकी प्रकट हो गई, अब उसके द्वारा प्रेम ये संभव हुआ भगवान। किंतु जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तब तक मन शुद्ध होने पर भी कभी भी वो उसके पतित होने की संभावना बन जाएगी।
वो तो ठीक है, मेरा कहना क्या है कि आत्मा के अंदर में इच्छा है तब तो इस शरीर में प्रतिफलन हो रहा है उसका,
नहीं
बिना इच्छा के शरीर में तो स्वतंत्र इच्छा नहीं।
सुनो तो ये करताल में क्या नहीं होता? हम जो कपड़ा पहने हैं उसे भी तो शरीर का संबंध है, उसमें क्यों नहीं होता? इतने प्रतिफलन की शक्ति नहीं है, मन में प्रतिफलन होने की
शक्ति है,
शक्ति
किंतु मन की तो इच्छा नहीं है।
इच्छा मन की इच्छा नहीं है, किंतु मन में प्रतिफलित होने की, जैसे ऐना में रूप झलकने की शक्ति है, काठ में, मिट्टी में और दूसरे चीजों में वैसा नहीं। ऐसे मन में भी कुछ गुण है और आत्मा की तो है ही है इच्छा, उसमें प्रतिफलित हो रही है। चलो विषय अंतर हो जाएगा इससे, अपने विषय अंतर। यहाँ पर कह रहे हैं मनोभव भग्न बेगा, वो भी आपने मन के भावों को, उनका मन तो सिद्ध है कृष्ण की प्रेम के लिए है, किंतु कह रही है ओहो ये तो ये जो भंवरे दिख रही हैं और सब जो चीजें दिख रही हैं ये सचमुच में इसका मनोभव प्रकाश हो रहा है। क्या मनोभव प्रकाश हो रहा है? कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रेम इनका प्रकाश हो रहा है। कैसे प्रकाश? आलिंगन स्थगित ऊर्म भुजई मुरारी गृहणंति पाद युगलम कमल उपहार। ये तो कमल का उपहार लेकर अपनी लंबी लंबी भुजाओं से ऊपर में बैठे हुए कृष्ण के पास में उनके चरणों में उपहार दे रही। कैसे दे रही हैं? पानी बढ़ी, पानी बढ़ गया, पानी बढ़ गया वो भ्रमर से और धारा रूप गई, बढ़ गया। अब वो कृष्ण जहाँ खड़े थे वहां पर उनको यहां तक भिजा दिया पूरा। मैंने क्या आलिंगन दिया कृष्ण को, किंतु कृष्ण निर्विकार खड़े रहे। तो उस समय वो कुछ लज्जित सी होकर के उनके चरणों में गिर पड़े।
पानी कम हो गया,
पानी कम हो गया, चरणों में गिर पड़े। अब पानी को उन्होंने क्या किया?
उनके चरणों में गिर पड़े।
अब उनका चरण के फूल अजय आप प्रसन्न हो गए। ऐसा गोपियों की कितनी सुंदर कहते हैं आलिंगन स्थगित छोड़ दिया। स्थगित माने आलिंगन करना, स्थगित कर दिया, जरूरत नहीं है। लज्जित हो गई, चरणों में एकदम झुक गई, झुक करके चरणों की पूजा करने लगी। गृहणन्ति पाद युगलम कमलोपहार, कमल का उपहार वो क्या चिंता। देखो एक विचार, ये हरिदास ठाकुर जी बेनापुर में भजन कर रहे हैं नदिया के पास में, शांतिपुर के पास में बेनापुर, वहां पर किसी राजा ने रामचंद्र उसने इनके प्रति ईर्ष्या होकर के, ये साधारण पब्लिक हमको नहीं मानती और हरिदास ठाकुर एक मुसलमान, जाति कुल शील आचार से कुछ भी नहीं और इनको इतना सम्मान देते हैं क्यों? अब वो उनको पतित करने के लिए, लोगों की दृष्टि में गिराने के लिए उसके पास में वेश्या को, बड़ी सुंदर वेश्या। उसका काम क्या है? बेसो परजीवी को कहते हैं वेश्या,
भवा वेश्या, बेसे भवा वेश्या, बेसो परजीवी वेश्या।
वेश माने क्या है? श्रृंगार,
बाहर का साज सज्जा,
बाहर के श्रृंगार से अपने को सजा करके लोगों को धोखा देना, इसका नाम है। इसलिए समाज में हमारे हिंदू शास्त्रों में सर्वत्र ही इसको घृणित बतलाया। कृष्ण ने स्वयं बतलाया, इसी राष्ट्र राष्ट्रीय के प्रसंग में बतलाया है, अस्वर्गम अजस्करम इत्यादि। अजस्कर माने क्या? लोगों में बड़ी निंदा होगी ऐसे कर्म, ताओ अपने पतियों के पास में रात का समय, घोर रात्रि, घोर जंतु द्वारा सेवित, बड़ी भयानक रात्रि, ये स्त्रियों के लिए पतियों की सेवा करना ही, यदि औरत निर्धन हो, रोगी हो, या जैसा भी हो, उसकी सेवा, क्योंकि यह शास्त्र में कहा गया है, ऐसा होना, वेश के द्वारा जीवित रहना, श्रृंगार के द्वारा दूसरों को ठगना, यही तो श्रीमद् भागवत में कहा है प्रसंगना, वो वेश बना करके प्रतीक्षा कर रही है, किसकी प्रतीक्षा कर रही है पिंगला, लोग आएंगे उनको कैसे लूट लें, कैसे लूट लें, यही पंत है, और रात भर जगती रही, अंत में करते करते एक दिन बड़ा उसको खेद हुआ, कहा जैसे ये को छोड़, बड़ी घृणित थी, बस सबको छोड़ करके निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान का स्मरण करते ही चित्त में शांति या उस हो गई, नेतनी भी नहीं आती, ऐसे और भी संग में प्रसंग में सपर्ण यहाँ पर
भागवत में प्राचीन काल में भी ऐसे बार वनिताओं का उल्लेख क्यों
है कि जैसा था ये जब से सृष्टि है तब से है,
जैसे कृष्ण के सामने
तो जीव को मोहित कैसे होगा, जीव मोहित कैसे होगा, इसलिए प्रारंभ काल से सृष्टि के प्रारंभ है अनादि काल से है, प्रश्न करो और सृष्टि से जीवों को मुक्त करने उन्होंने इच्छा की तो जीवों को कैसे दंड देंगे, ये कारागार रच दिया, इसमें रूप रस शब्द गंध स्पर्श ये सब भर दिया, मरो तुम, साधारण जीव ये समझता नहीं, इसलिए उनको जेल खाने में सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, दंड देने के लिए ये यही ये सुन लोहे की शिकल से नहीं काम होगा, यह आसक्ति की बड़ी मजबूत जंजीर लगा, इसी के रूप रस गंध स्पर्श के द्वारा जीवन लगा। तो हम देखते हैं तीन दिन उसने सुना, हरिदास ठाकुर जी से नाम सुन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छा वो तो सब प्रकार के भोगों से समृद्ध थी, बहुत सुंदर रूप है ना, और भाई ऐश्वर्य में थी, साधारण नहीं थी, राजाओं से उनके संपन्न, उनको चाहिए क्या सुंदर रूप और धनी मानी यदि उनको मिल जाए ना तो उनका बेश व्यवसाय अच्छा चल रहा है, यदि किसी को संसार में सबसे धनी और सबसे सुंदर यदि कृष्ण मिल जाए, कृष्ण से कोई सुंदर है, कोई उनसे धनी है, ऐश्वर्य और वैभव संपूर्ण उनके चरणों में लोग, ऐसे कृष्ण से यदि किसी का मिलन हो जाए, जीवन के पास हो जाए और बेशा नाम भी कट जाए, हरिदास ठाकुर जी क्या करते हैं वो सुनाते हैं। अच्छा उसको हो गया भैया हो गया ना, बरसात ही साथ हरिदास ठाकुर जी के चरणों में गिर पड़ी है और बोली जी आप तो हमारा उद्धार, अरे उद्धार के किस लिए, तुमको तो और वैभव की जरूरत है ना, आई थी किस लिए, वैभव के लिए ना, राजा उसको क्या दे देगा, तुम जो कुछ मांगेगी सब हम देंगे, तो उसको तो वैभव के लिए आई और उसको सुंदर से सुंदर रूप चाहिए, राजा का रूप मिला हुआ है उसको, उसको वैराग्य क्यों हो गया, क्यों वैराग्य, और उसको कहते हैं जैसे हरिदास ठाकुर ने उसका उद्धार कर दिया, क्या उद्धार किया, उसका उद्धार ये किया जो वैभव में थी, बड़े सुख से पल रही थी, बड़े बड़े लोग उसके पास में आ रहे थे, उनके चरणों को चूम रहे थे, चरणों में नतमस्तक हो रहे थे, वो आज सब कुछ छोड़ करके दरिद्र बन करके एक कपड़े मोटे कपड़े पहन करके और वहां पर खाने के लिए कुछ नहीं व्यवस्था, वो दरिद्र की अवस्था में था और कृष्ण कृष्ण कहने, तो उसका क्या उद्धार हुआ, जगत के ऐसे लोग हैं जो ऐसी स्थिति को चाहते हैं, जो इतना बड़ा भारी ऐश्वर्य धन संपत्ति से संपन्न होकर के और सब समय सुंदर रूप है, यौवन है, सब कुछ है, धन है, प्रतिष्ठा है, उस स्थिति को छोड़ करके भीख मांगने के लिए मोटे कपड़े मैले का चेले को पड़े पहनकर और दिन रात हरि नाम कर रहे हैं, इसका क्या उद्धार हुआ? आजकल के लोगों की दृष्टि में हुआ उद्धार न कि और ग्यारह सातल में क्या हुआ? हम लोगों की दृष्टि से साधारण जो विषय है उनकी दृष्टि में तो वो इसका बड़ा भारी दुर्भाग्य है। सब वैभव छोड़ करके वो पगली हो गई ना, क्या यथार्थ में वो पगली ही कहेंगे, किंतु इसको ऐसा हुआ क्यों, इस पर विचार कभी किया क्यों हुआ? ना हुआ, हरिदास ठाकुर ने उसका उद्धार तो कर दिया, किंतु क्यों ऐसा हुआ? उस दिन तना कह दिया जी भाई ये बात ठीक नहीं, बात ठीक नहीं है, तुम ऐसा मत, किंतु उसको स्वभाव से ही वैराग्य हो गया, ऐसा छोड़ दिया। उसको कोई इससे कोई अच्छी चीज मिली होगी तब तो परम दृष्टवानवर्तते गीता में कहते हैं। अच्छा, वो जो नाम करती है हरिदास ठाकुर, जब नाम करते हैं तो उनके हृदय में भावना क्या होती है, क्या भावना होती है, क्या वो देखती है, देखता है हरिदास ठाकुर जी क्या देखते हैं? संसार में सबसे जो सुंदर रूप है कृष्ण का, देखते हैं कि नहीं? नाम नाम अभिन्न है। अच्छा, तो वो देखते हैं संसार में ऐसा कोई रूप है जो रूप को उसको देख लिया फिर वो संसार का कोई रूप देखेगा न कि बेस पर जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा देखो, कृष्ण ने बंसी बजाई, गोपियां चल पड़ी, गोपियां श्रृंगार कर रही थी, छोड़ दिया, कपड़े तो अच्छी तरह से पहनना चाहिए, वो कपड़ा भी रह गया,
अरे
वो यहाँ से गिर गया नीचे और वो दौड़ पड़ी, तो कपड़ा हुआ फैलता हुआ चला जा रहा। अच्छा, आंख में अंजन करना चाह, अभी आंख में अंजन किया, एक आंख में चल पड़ी, ये कोई रूप है, श्रृंगार है, कोई श्रृंगार है ना, क्या है ये? यहाँ का गहना है, यहाँ पर पहन लिया नहीं तो वो भी नहीं पहना, कोई गहना नहीं पहन सकता, भूल गई सब श्रृंगार करना। अच्छा, वो कृष्ण की, अच्छा ये श्रृंगार ठीक है ना, वो श्रृंगार ठीक है, वो जो भाव रूपी श्रृंगार है, नौविध नवरस
नवरस भाव विकार,
वो क्या है? ये जो भाव है ना, ये भूषण है जीवों के लिए और ये सौंदर्य है, ये उनका श्रृंगार है ना। अच्छा, वो जो पहले जो वेश्या आई और उसने जो श्रृंगार सुंदर करके हरिदास ठाकुर के सामने आई और फिर इसके बाद में जब तीन रात्रि के बाद में जब उसको इस साधारण वेश में देखा और जब हरिनाम करते हैं तो आंखों से आंसू आ रहे हैं, प्रेम के आंसू छलक रहे हैं, शरीर का होश नहीं, कपड़े का होश नहीं, दोनों रूप में कौन सा सुंदर है?
ये भाव सुंदर है।
क्यों सुंदर है? वो जो चीज को अंतर ही मन में, मन के द्वारा जो, आत्मा के द्वारा जो देख रहे हैं या हरिदास ठाकुर देख रहे हैं और जो वो दिखने लगी, उसके लिए कहते हैं सही से
परम महान,
परम महान्ति मैंने परम महंत, महंत उत्तम भागवत को कहते हैं, और परम महान्ति मैंने उत्तम वैष्णव, उत्तम वैष्णव का यही लक्षण है, इसलिए वो उसकी ऐसी दशा हुई। और कितना सुंदर श्रृंगार करके कृष्ण के सामने में वो कीर्तन कर रही होगी, गोपियों के साथ में करेगी, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए वैराग्य ऐसा ही नहीं हो गया। हरिदास ठाकुर की ये कृपा थी उसके ऊपर में, ये इस प्रकार का उसका दर्शन बना दिया और वैसे भाव में। तो ये गोपियां साधारण रूप में दिख रही हैं ऐसी, किंतु कैसी स्वभाव की है, यदि हरिदास ठाकुर के संपर्क से इतना संसार में सुखी आदमी जीव भी रूपवान होकर के, रूपवती गुणवती सौंदर्यवती और ऐश्वर्यती होकर के भी उसको तुच्छ एकदम घृणा के समान उसको ढूंढ कर दिया और वैराग्नि बन गई, कैसी? मोटे कपड़े एक कपड़ा और कोई दूसरा कपड़ा नहीं, तुलसी में जल दे रही है, उसकी परिक्रमा कर रही है। कोई ला रहा है खाने के लिए भोजन, उसके तरफ पर उसकी दृष्टि नहीं है, क्या देख रही है? देख रही है तन्मय भाव से वो भाव लाने के लिए। बिंदा जी से प्रार्थना करो, गंगा जी पास में उनसे प्रार्थना करो। अब देखो अब स्थिति क्या हुई, उसमें वेश्या का के पास में कैसे लोग जाते थे? पहले जितने बदमाश फटीचर धूर्त गामी संसार में जितने भी दोष हैं वैसे लोग जाते थे ना, अब इसके पास में कैसे लोग आने लगे? अब देखो तो बड़ो 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 माने उत्तम उत्तम ये सब वैष्णव लोग उनके पास में जाने लगे। किस लिए? जा करके
प्रणाम हाथ धो करके
वो देखती है कि नहीं देखती है, वो अपने भाव में मग्न होकर के 4 लाख या 3 लाख हरिनाम उसको अपने गुरु से बतलाए वो उसको कर रही है और वो देख रही है। न उसको खाने की चिंता, न पहनने की चिंता, न कुछ। यदि साधक अवस्था में ऐसा हो सकता है आप गोपियों की चिंता कर नहीं कर सकते, इसलिए इसी को कहते हैं उद्धार। उद्धार माने क्या है? वो जो भोगों में जो अपना सुख जो देखती थी उसको उन्होंने बदल क्या दिया, एकदम लोगों की पहन करके या जैसा साधारण जीवन का निर्वाह करके भगवान का भजन करना, इसको तो उद्धार कर है। किंतु वो कैसी स्थिति में
कृष्णार्थे अखिल भोग,
इसलिए कहते हैं कृष्णार्थे अखिल भोग त्याग,
अखिल
समझे नहीं, कृष्ण के लिए समस्त भोगों का त्याग और अखिल
चेष्टा पराया,
सब चेष्टाएं कृष्ण के लिए हो। गोपियां ऐसे दोनों चीजों में हैं, इसलिए इनके भाव ऐसे हैं और ऐसे भाव साधारण लोगों में भी ये देख रहे हैं, इसलिए गोपियां साधारण नहीं है ना? आलिंगन गोपियों का भाव अपने आप प्रकट हो गया। क्या प्रकट हुआ? इनके भाव क्या है कृष्ण के प्रति, ये भाव प्रकट। अब यही थोड़ा सा प्रकट हुआ ना, अब बड़ी लज्जा है, ओहो ये तो हमको प्रकट नहीं करना चाहिए, ये प्रकट हो गई। साथ ही साथ उन्होंने सूट पलट दिया, हंतायम अग्रय बला हरिदास राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानं तनो सह एकदम बदल दिया है। हंता हंताया ओ गिरिराज गोवर्धन आपकी जय हो जय हो, आप हरिदासों में इसलिए अपने भाव को छिपाने के लिए, इसलिए भगवत भक्त जब भजन करते हैं भगवान के लिए, और कभी कभी लोगों में प्रकाशित हो जाता है आंसू, देखते हैं ना जब आंसू आ जाए शरीर में रोमांच कंप इत्यादि आ जाए तो उसको क्या करते हैं?
अष्ट शक्ति भाव की कुछ लक्षण,
भाई आंख में कुछ पड़ गया,
अच्छा
आंख में कुछ चीज पड़ गई, क्यों भाव को छिपाना है? साधारण आदमी कहेंगे ठीक ही कह रहे हैं, पर आंख में कुछ पड़ गया, और जो भाव भक्त होंगे वो समझ लेंगे, वो देख लेंगे, उनकी नजर से ये बच नहीं सकते, इसलिए इनके भाव के समकक्ष जो रहने वाले जो हैं सुखदेव गोस्वामी को ये नहीं खुला और लोगों को ये नहीं खुला सकता, इसलिए पीछे से अब हम काय हम अद्र अगला या इस श्लोक में जो कुछ छूट गया है कुछ हम कल इसके पहले करेंगे। अग्रा ही
कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते वैपायनो निराकर्यायुहा पुत्रेति तन्मयतया करवो विनिन्दु तं सर्वभूतहृदयम्।
भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा संग्रही भजन रहस्य के सप्तम ज्ञान के अनुकूल श्रीमद्भागवत के श्लोकों को हम लोग
अनुशीलन कर रहे थे, जिसमें पूर्व राग साधकों के लिए कौन साधक रागानुगा वैष्णव जो भावावस्था में पहुंचे उनके लिए साधन के लिए उपयोगी है। पूर्वराग के लिए कुछ श्लोकों को यहाँ पर दे रहे हैं, जिसमें बतलाया नवदस्तारी के मुकुंदगी आवत्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थलित उर्म भुजई दूरारे गिरण अंतिपादि युगलम। यहाँ तक हम लोग इसमें आवत्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा और आलिंगन स्थगित उर्मी भुजई मुरारे, इसके संक्षेप में हमने कुछ व्याख्या की। विश्वनाथ अच्छा चतुर्थी ठाकुर जी की विकास गोपियों में जमुना नदी, मैंने चेतन लोगों की तो बात किया, अचेतन लोग भी बंसी तो धन कृष्ण की बंसी ध्वनि को सुन करके ऐसे मोहित हो जाते हैं, स्थावर जंगम हो जाता है, जंगम स्थावर बन जाता है। अब जमुना नदी स्थावर होने पर भी किस तरह से उनके अंदर में मनोभाव होता है, विकार होता है मन का, और किस प्रकार से वो नीचे जाना छोड़ करके ऊपर की तरफ आने लगती है और उसमें भ्रमर आ जाते हैं। ये भ्रमर नहीं है बल्कि उनका मनोभाव है, जो भग्न हो जाने पर स्थगित हो गया तथा उनकी धारा रुक गई, आगे चलने से रुक गई और वो ऊपर में चलने लगी और वो पानी बढ़ने लग गया और वो कृष्ण को हस्ताक्षर तक आलिंगन करने के बाद कृष्ण ने माने चुपचाप वो कृष्ण खड़े रहे। इसके बाद बड़ी लज्जित होकर के अंत में कमल उपहार लेकर उनके चरणों में अपने वस्त्रक्षल से उनके चरणों को ढक लिया या हाथों को। ये गोपियां अपने अनुरागमय भाव को दिखाकर देख रहे हैं कि ये जमुना में भी है। अब है कि नहीं दो दृष्टियां हैं, यदि स्थावर मान लेते तो नहीं है और चिन्मय मान ले जमुना जी को, विशाखा जी मान लगे तो उनमें है, इसलिए वहाँ के स्थाव जंगम साधारण सभी सच्चिदानंदमय हैं, इसलिए वहाँ पर सबने गोपियाँ देख रही हैं और साक्षात में ऐसा भाव। चैतन्य महाप्रभु जी भावावेश में पूरी जगन्नाथपुरी में कूद गए। क्यों कूद गए? उन्होंने देखा जाइए नीला पानी ये जमुना जी है, तो महाप्रभु का यह भ्रम था या सचमुच में कूदे न, क्या बात थी? समुद्र तो जमुना नहीं था, उसमें कूद गए भावावेश में। तो यहाँ कुछ साम्य भाव वाले स्थानों में उनका ऐसे हो जाता है, ऐसा है। अतः जब उनके भावों के अनुरूप वृंदावन, जैसे वन को देखा तो वृंदावन देखा और नदी देखा तो उसको कालिंदी मानकर, तो उसने कालिंदी तो थी नहीं, किंतु चैतन्य महाप्रभु तो सत्य संकल्प है, तो वो कहाँ कूदे होंगे? वो सचमुच में जमुना में कूद गए और वहीं पर कृष्ण और गोपियाँ सभी वहीं पर मिल गई होंगी जरूर, और उसी में आनंद से अपना विहार कर रहे थे। और कुछ देर के बाद में क्षण मात्र नहीं हुए तब तक होश आया, तो देखा जो सभी भक्त लोग उनको घेर करके नृत्य कर रहे हैं, वो एकदम संधियां उनकी सब एकत्र हो गई और कच्छप जैसे हो गए, गोलपिंड केवल रह गए, एक मछुआरे के जाल में आ गए, समुद्र में वैसे लुढ़क रहे थे।
और उनको मछुए ने उनको मछली मारने के जैसे उनको निकाला, वो सोचा ये बड़ी लंबी चौड़ी मछली कोई फंसी है। जब निकाला तो दिखा रहे ये क्या, वो डर गया और गोंगों गोंगों शब्द उसमें से हो रहा है, कही ये तो भूत आ गया जाल में। बस उसको भूत पकड़ लिया और जाल को बाहर रख करके और वहीं से भागा। भाग करके वो आ रहा था जगन्नाथपुरी की तरफ, चक्रवेड की यह घटना है। 2-3 मील पुरुषोत्तम क्षेत्र वहाँ से पुरी से वहाँ से पंकिम मुहाना भी कहते हैं, वहाँ से थोड़ा सा ऐसे घूम गया है सब। तो वहीं पर भागा, जबकि वो तो रास्ते से भक्त लोग आ रहे थे महाप्रभु को समुद्र के किनारे खोजते खोजते, जब ही समुद्र में कूदे होंगे सब जगह देख लिया कहीं नहीं मिली, अंत में खोजते 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 समुद्र के किनारे किनारे आने लगे। देखा जे एक आदमी फंसा हुआ भगा हुआ आ रहा है भूत भूत करता है। अरे क्या हुआ, तो भूत हमको पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया, ठहर जाओ मैं बुझा हूँ तुम्हारा भूत उतार देता हूँ। स्वरूप दामोदर ने उसे पकड़ लिया और एक थप्पड़ गाल मारा और ऐसे कुछ मंत्र जैसा पढ़ दिया, ये तो सचमुच में भूत उतर गया। अब तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम वहाँ से आ रहे, क्यों तुम्हारी दशा क्यों हुई, हमको भूत पकड़ दिया, वहीं पर एक भूत हमारे जाल में पड़ गया। तो कैसा वो भूत था, तो उसकी कोई हाड़ ताड़ कुछ नहीं था, वो गोल पिंड जैसे कछुए जैसा हुआ। अच्छा ठीक है, तो चलो तो मैं दूर नहीं निकट में नहीं जाऊंगा, तो ठीक है तुम दूर से दिखा देंगे। तो बस उसको लेकर के चले और वहाँ जाकर के देखा, अरे वही महाप्रभु जी। बस वो तो चला गया और ये सब देखा जी, अब इनको कैसे होश में लाया जाए। तब वो कीर्तन करने लगे चारों तरफ से और कीर्तन की ध्वनि सुनते सुनते कुछ देर में महाप्रभु हुंकार करते उठे, कहा जी हमको वृंदावन में मैं था, राशस्थली में था, कृष्ण हमारे साथ में थे, गोपियां हमारे साथ में, हमको वहां से क्यों उठा दिया। बड़े दुखी हो गए। तो यह उनका भ्रम था कि वृंदावन में है, न कि स्फूर्ति थी न क्या था। जो जैसा आदमी होगा उसके अधिकार के अनुरूप में वैसा ही, सबका अधिकार एक समान नहीं है। कोई इसको स्फूर्ति मान सकते हैं तो ठीक है उनके लिए स्फूर्ति ही है, और कोई साक्षात रूप में देख रहे हैं तो उनके लिए वैसा ही, और कोई भ्रम मानेंगे तो उनके लिए भ्रम, वो अपने अपने अधिकार, किंतु बातें सभी ठीक है, अधिकार के अनुरूप में ये सब चीजें लगती हैं। तो यहाँ पर इसलिए बतला रहा था, बतलाया था कुछ हाँ, तो नदियों में जो देख रहे हैं गोपियां देख रही हैं नदियों में, तो नदियों में भी यदि विशाखा इत्यादि नित्य सखियों उनको मान लिया जाए तो ठीक है, मैं तो उसमें स्फूर्ति भी ठीक है, अपने अपने अधिकार के रूप में जो जैसा भक्त होगा वैसा होगा। अब ये बतलाया वो गोपियां लज्जित हुई, गोपियां ने यमुना जी लज्जित होकर, और फिर उनका काम का ज्वर उतर गया, उतरने पर लज्जित होकर के उनके चरण में कमल का उपहार दे करके चरण की पूजा कर। मुरारे शब्द क्यों लिखा है, मुरारे
में
स्थगित उर्म भुजा रूपी उर्मी अथवा उर्मी रूपी, उर्मी माने लहर रूपी भुजा के द्वारा कमल को तोड़ लिया और तोड़ करके उनके चरण में उपहार दे दिया, इसके चरण में मुरारे। मुरारे क्यों कहा, गोपियों की मुरारे की स्फूर्ति क्यों हुई, कृष्ण का थी या और कोई दूसरा शब्द कर, अजय नहीं वहाँ पर ठीक पीठ नहीं बैठे गए, उसमें से एक शब्द भी कहीं दर्द हटा करके दूसरा शब्द करें तो साफ अर्थ ही चौपट हो गया। ये लोग व्यास जी सुखदेव गोस्वामी या ये बड़े बड़े जो राइटर्स होते हैं वो बड़े चुन करके वो शब्द को रखते हैं,
यहाँ पर मुरारी शब्द का अर्थ है मूर नामक असुर के अरे उसको मारने। पुराने के अनुसार में ये मुरारी मूर को नारायण ने मारा था या नारायण के किसी अंश ने मारा था, भगवत अवतार ने उनको मारा था। देवताओं और दानवों और दैत्यों में, देवताओं और असुरों में विद्रोह, उसमें अमृत पीने के बाद में देवता लोग बलवान हो गए और दैत्यों को उन्होंने मारा, बहुत दैत्य लोग उसमें मारे गए। उसे ये वहां युद्ध छोड़ करके भागा और भागने के बाद में ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या, ब्रह्मा जी कठोर तपस्या से समझ गए और वहां पर उपस्थित हुए। बोले जो क्या चाहता है, मैं ये चाहता हूं कि देवता लोग हम लोगों के वंश को भंस कर रहे हैं और हमें भी मारेंगे, इसलिए आप ऐसा कृपा करके हमें वर दीजिए, कोई भी हमसे असुर दानव देवता यक्ष गंधर्व किन्नर कोई भी हो मनुष्य यदि हमसे लड़ने आए तो उसके ऊपर में मैं अपनी हथेली रख दूं तो साथ ही साथ जल करके मर, अपने आप शत्रु हमारा नहीं कल हथेली रख। उन्होंने कहा कि वो मस्त जाओ आप, तो वो लौट करके समस्त दानों में बलवान हो गए, देवता लोग उसके डर के मारे भागने लगे, मनुष्य की तो बात नहीं, अस्परा गंधर्व सभी लोग डर में लगे। अब वो देखा जी देवताओं में सबसे बलवान जम है, शासक भी, तो जम महाराज जी के पास में गया। जम महाराज देख करके भगने लगे, कहे भगो मत भाई, मैं आया हूँ तुमसे लड़ने के लिए, तो मैं आपसे लड़ नहीं सकता, तो एक बात करो हमको कुछ परामर्श दो, हमारे जैसा कोई योद्धा को बतलाओ जिसे कि मैं लड़ सकूँ। कहाँ योद्धा तो बतला दूंगा, अब लड़ना काम आपका, मुझसे आपके छप्पे छुड़ा देगा यदि उसे देख लोगे, आप नारायण से जाकर के लड़ सकते, हरि से लड़ सकते, और जो कहाँ मिलेगा तो यही मुश्किल है, यही मुश्किल है, वो कहाँ नहीं है ये कहाँ नहीं जा सकता, तब उसको पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए आप नारद इत्यादि से पूछ लीजिए, वो कभी कभी जानते हैं, आपको बतला देंगे। खोजते ढूंढते ढूंढते वो नारद से नारद में, कहे इस समय तो वो अपने लोक में, लोक माने ब्रह्मांड के अंतर्गत वो ये खरी लोक है,
रमा प्रिय वैकुंठ
इत्यादि में होंगे, उसमें तुम जाओ, तो वहाँ पर वो पहुँचे। लेकर कहे तुम कैसे आए भाई यहाँ, यहाँ तो आओ, तुम लोगों का आना बड़ा असंभव है, तुम आ गया कैसे आए। वो खूब जोर से हंसने लगा, हंस करके बोला मैं आया आपसे लड़ने के लिए, लड़ने के लिए, हाँ लड़ने के लिए आपसे, हमसे संसार में कोई लड़ ही नहीं सका कोई भी, तो सब लोगों ने कहा जम महाराज ने कहा है कि आप ही हमारे समकक्ष योद्धा हैं, इसलिए तो तू क्या लड़ेगा, बूढ़ा जैसा तुम्हारा हृदय कांप रहा है,
देख करके धड़कन हो
रहा है, धड़ 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 कर रहा है, मैं सिर्फ भीरू का पुरुष और डरपोक आदमी से मैं नहीं लड़ता, मैं भीरू का पुरुष कहाँ, हमारा हृदय तो नहीं धड़क रहा है, अरे देख तो सही, दूसरों को देखने की क्या जरूरत, हम तो देख रहे हैं ऐसे ऐसे धड़ पर कर रहे हैं, तो तू देख लो। तो सुन सचमुच में वो भूल गया भगवान की मैस और यहाँ जहाँ रखा बस चला की चतुराई से उन्होंने उसको जला करके खत्म कर दिया। देवता लोग सुमन दृष्टि करने लगे, बड़े आनंदित हुए, आज प्रभु ने हमारी रक्षा, इसलिए यहाँ पर गोपियों ने किस रूप में मुरारी शब्द का प्रयोग किया है, शत्रु के विनाश के लिए गोपियां यहाँ मुरारी शब्द कृष्ण का के लिए दोहरा, हमारा भी शत्रु है उसको आप बहुत दिनों से कष्ट पा रहे हैं इसलिए इसको दूर कर दीजिए, इसे मार करके खा उसको। गोपियों का शत्रु कौन है कोई
काम रोग हृदय रोग, ये बौद्ध निश हमको तंग कर रहा है और ये काम आप ही कृष्ण के प्रति है और इसलिए हम लोग बड़ी दुखी हैं, जर्जरित हो रही है। तो हम लोग आपका स्मरण कर रहे हैं, इस काम को आप दूर कर दीजिए, इसे मार करके खत्म कर दीजिए, सदा के लिए हम निश्चिंत हो जाए, इसलिए उनको स्मरण कर। मार शब्द का अमरकोश में अर्थ दिया है मूल शब्द का प्रयोग है क्लेश संता काम भोगे च कर्मणा दैत्यभेद, मैंने चार प्रकार से इसका मूल शब्द का प्रयोग क्लेश के लिए भी हो सकता है। क्लेश को दूर करने वाले को हम लोग जन्म जन्मांतर से इस संसार के चक्कर में पड़े हुए भगवान को दूर करें। हमारा यही रोग है कि हम संसार में पड़े हैं और शुकर की भांति, जैसे शुकर विष्ठा खा रहा हो और आदमी को घृणा लगे, अरे ये शुकर विष्ठा खा रहा है, तो पत्थर लेकर तो उसको मारते हैं, भागो यहाँ से, तो पत्थर लगते हैं वहाँ से भागेगा किंतु फिर वहीं पर आएगा, उसको अच्छा समझता है, पुष्टिकारक मनोहर सुखाद्यमान समझता है, और ये घृणित चीज। ऐसे ही संसार रूपी सुख को हमारे शास्त्रों ने कहा दिया, ऐसे विष्ठा के सुख पुनः पुनः जन्म लेते हैं और चर्बित चर्वणानम प्रहलाद महाराज ने चर्वणानम मैंने चर्बित करके और फिर उसको फेंक देते हैं, फिर उसको जैसे कुत्ता क्या करता है, हड्डी एक ले लिया और उसको चिबाता है, उसमें रस तो है नहीं, फिर उसको निकलता है, फिर खाता है, दांत और आसपास में तालू में कहीं छेद हो जाता है, उसको अपने आप रक्त गिरने लगता है और उसी को समझते वाह ये तो बहुत ही नमकीन बहुत ही सरस पदार्थ। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, सांप हड्डी के समान नीरस है, अपना ही कुछ खो करके तब उसमें से रस जैसा मालूम होता है, उसमें संसार और ईश्वर में कोई रस, बुद्धिमान पुरुष इसको समझे सब इसमें दुख ही दुख है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा चर्बी की चर्बी, भगवान कृष्ण का स्मरण करने से भगवान उस मूल रूपी क्लेश को अविद्या को अथवा संताप, संताप मैंने भी वही अर्थ, संताप हम लोगों को कैसे है कृष्ण के भूल जाने से ही सर संताप, और काम भोग संताप का मूल कारण यह काम भोग है, जहां कामना किसी प्रकार की हुई, किसी प्रकार की कामना बस समझो जो दुख उसको है, बस भगवत भक्ति की कामना को छोड़कर किसी भी संसारिक सुख के लिए प्रयास कामना करें, ये देहात्म बुद्धि के कारण ये कामना है, और उस कामना से ही क्रोध होगा और क्रोध से बुद्धि विवेक नष्ट हो जाएगा और फिर क्या होगा प्रणश्यति उसका विनाश। ये क्रोध किसको अधिक होगा, जिसको अधिक कामना है, जिसको भोगों की लालसा है उसी को, और क्रोध होने से बुद्धि हिताहित का ज्ञान नहीं होगा और हिताहित का ज्ञान नहीं से क्या होगा विनश्यति उसका विनाश। इसलिए काम ऐसा क्रोध है ऐसा रजोगुण सम, काम ऐसा क्रोध जिस काम ये जो काम ये कर्म ये काम हाँ अंगुली से मिलता है ये काम और इस काम से जो क्रोध उत्पन्न होता है यही हमारे समस्त दुखों का कारण और कुछ कारण। इसलिए काम को भोगे काम का भोग यहाँ पर किसी को कहा हृदय रोग, यह हृदय रोग हमें सता रहा है, आप मुरारे यदि हैं क्योंकि गर्गाचार्य ने कहा था कि कृष्ण के नामकरण के समय में नारायण समो नारायण के सम गुणशाली, इसलिए मुरारी ने जब मुर नामक राक्षस को हत्या की तो हमारे हृदय रोग रूप की जो रोग है जो असुर है इसको भी आप समझ सकते हैं। उसे भी दूर कर सकते हैं। इसलिए गोपियां उनसे प्रार्थना कर रही हैं मुरारी शब्द का। अधिक प्रेम है ये जमुना, एक साधारण रूप में एक नदी है, किंतु कृष्ण के दर्शन से, उसकी बंसी ध्वनि सुनने से, उनका स्पर्श करने से प्रेम का इतना सुंदर भाव सब इसको प्रकट हो रहे हैं। हम लोगों जैसा दुर्भाग्य इस विश्व में कोई नहीं, लोग यहां सोच रहे न तो जैसे जमुना जी कमल उपहार लेकर के सबके सामने उपहार देती हैं कृष्ण के चरणों में, हम ऐसा नहीं कर सकते, न हमारे हृदय में ऐसी कामनाएं आएंगी, और हम न तो उनके यहां तक हम आलिंगन कर सकते हैं, और न हमें प्रेम का इतना आवर्त आता है, भाव आता है, जो लज्जा को छोड़ दें, अपने धर्म को छोड़ दें, एकदम पागल बन जाए, ऐसा कभी संभव नहीं है। किंतु जमुना जी क्या करते हैं, जमुना जी मानो पागल होकर के सबके सामने फूलों का उपहार लेकर के कृष्ण के चरणों में विनती प्रार्थना करती है, उनको वस्तक्षल तक माने डुबो करके अपने पानी में मानो वस्तक्षल तक उनको आलिंगन करेंगे। ये प्रेम की जो योग भाव देख हम लोग कभी नहीं कर सकते, हम लोग लज्जा के मारे लोक लज्जा और धर्मों के